बलवंत मेहरा ने पूरे परिवार को हाल में बुलाया। कमरे में हल्की सी चुप्पी का माहौल था। उनके दोनों भाई, भाभियां, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठे थे। बृजेश मेहरा, जो सबसे छोटे भाई थे और हमेशा सीधे साधे स्वभाव के लिए जाने जाते थे, उठकर बोले, भाई साहब, आपने अचानक हम सबको क्यों बुलाया? क्या कोई बड़ी समस्या है? उनकी आवाज़ में हल्का सा चिंता और जिज्ञासा दोनों झलक रही थीं। बृजेश हमेशा आम जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते थे और ज़्यादातर बड़े मामलों का अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे। बलवंत मेहरा की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, रमेश, तुम्हें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। रमेश, जो सोफे पर बैठा हुआ आराम से बलवंत मेहरा की तरफ देख रहा था, हल्की सी हलचल के बीच गौतम वहां पहुंचे। उन्होंने कदम बढ़ाते हुए फाइल रमेश की ओर बढ़ाई। ये फाइल आपके लिए है, इसमें सब कुछ दर्ज है। रमेश ने फाइल हाथ में ली। दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखा था कि वेद के खिलाफ किस तरह की योजना बनाई जा रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली, दस्तावेजों को फोल्ड किया और गंभीर भाव से पढ़ना शुरू किया। पहले से कुछ सबूत उनके खिलाफ तैयार किए जा चुके थे, लेकिन ये देखकर वे थोड़े चौंक गए कि कोर्ट में इनकी वैधता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। रमेश ने हंसते हुए कहा, इन दस्तावेजों के बिना मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन कोर्ट में इसका कोई असर नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है, इन सबूत के बेस पर मुझे सजा नहीं हो सकती। हल्की हंसी उनके चेहरे पर थी। उन्होंने आगे देखा और बोले, आजकल बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है गौतम, वेद के लिए तुम्हारा काम सराहनीय है। रमेश मेहरा ने अपनी सीट से खड़े होकर कहा, अगर पुलिस को बुलाना पड़े तो वे बुला ही सकती हैं, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं। पूरा परिवार स्तब्ध था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रमेश इतनी निर्भीकता से स्थिति का सामना करेंगे। किसी के चेहरे पर अविश्वास, किसी पर चिंता और किसी पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। बलवंत मेहरा ने फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं इंडस्ट्री के हिस्सों को बांट रहा हूँ। जितने भी शेयर हैं उनकी उचित हिस्सेदारी के अनुसार कंपनियां मिल जाएंगी। ये घोषणा सुनते ही हाल का माहौल और भी गंभीर हो गया। ताई जी, सुधीर ने सवाल किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा। सुधांशु ने भी जोड़ा, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया कि वेद के खिलाफ क्या योजना बनाई जा रही है? हमें भी इसका पता होना चाहिए था। दीपक, जो अपने डैड की साजिश में शामिल होने की बात सुनकर भावनाओं में डूबे हुए थे, खड़े हुए और बोले, डैड, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की योजना में शामिल होंगे। बृजेश का चेहरा चिंतित था, लेकिन वे शांत रहने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अन्य की आंखों में सवाल और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। बलवंत मेहरा ने गहरी सांस ली और बोले, मैं जानता हूं कि आप सबको ये सब अचानक लगता है, लेकिन ये निर्णय पूरी इंडस्ट्री और परिवार की स्थिरता के लिए लिया गया है। समय आने पर आप सब इसका महत्व समझेंगे। अब चीजें साफ हो रही हैं, लेकिन अब हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने विचारों में डूबा हुआ था। रमेश ने फाइल वापस रखी और सभी की ओर देखा। तो ठीक है, जिसका हिस्सा है दे दो, रमेश मेहरा ने कहा। मगर हमें भी तुम्हारे बराबर का हिस्सा चाहिए, रमेश मेहरा बोया। जिसके जितने प्रतिशत शेयर हैं उसे उतना ही हिस्सा मिलेगा, बलवंत मेहरा ने सख्त लहजे में कहा। जो शेयर मेरे पास हैं मुझे उसी की प्रतिशत मिलेगी, बलवंत मेहरा बोला। और तुम्हारी पत्नी, उसके शेयर्स, वो भी तो तुम्हारे पास हैं? वो शेयर उसके डैड ने दिए थे, बलवंत मेहरा ने जोड़ते हुए कहा। रमेश भड़क उठा। मुझे सब पता है, ये तुम्हारी चाल है। तुम सबसे बड़ा हिस्सा हथियाना चाहते हो। तुम बोल रहे हो कि मैं प्रॉपर्टी के लास्ट में वेदिका से शादी की, मगर वेदिका का रिश्ता मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया था। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था। सगाई के बाद शादी से तुमने मना किया क्योंकि तुम अमीर राजकुमारी से शादी करने चले गए थे। तुम्हें लगता था कि वो राजकुमारी तुमसे शादी करेगी और बैठे बैठाए उसकी अरबों की दौलत मिल जाएगी, मगर उसने तो तुम्हें घुमाया। तुम्हारे जैसे लड़कों को वो मुंह भी नहीं लगाती। और तुम ये बताओ कि मैंने डैड के कहने पर वेदिका से शादी की तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे उसके शेयर नहीं चाहिए, मगर वो शेयर अपने बेटे वेद को देगी और हमारा हिस्सा इस घर से निकलकर हमारे बेटे के पास जाएगा। तभी वेदांत ने गहरी सांस के साथ कहा, मुझे बेहद अफसोस है। हाँ, मैंने गलत किया, बहुत गलत किया, पर माफी का भी क्या फायदा? जो मैंने किया था उसका सजा मुझे पहले ही मिल चुकी है। इसीलिए डैड, जो भी हिस्सा हमारा है हमें सिर्फ उतना ही चाहिए जितना हमारा हक है। रमेश गर्जा, तुम मुझसे सवाल कर रहा है? प्लीज डैड, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। मुझे कुछ अतिरिक्त नहीं चाहिए, जो हमारा है वही चाहिए, वेदांत शांत पर टूटे हुए स्वर में बोला। तुझे शेयर सिर्फ मेरी वजह से मिले हैं, तेरी वजह से नहीं, रमेश मेहरा फिर चिल्लाया। वेदांत ने गहरी मजबूरी के साथ कहा, तो ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपना हिस्सा रखिए, मैं खुद देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। करीना, जो अब तक तमाशा देख रही थी, झपट कर बोली,
मतलब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तो फिर पूरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वेदांत ने शांत लेकिन बहुत दर्द में कहा, हाँ मैं सब छोड़ सकता हूँ। मैं और तुम कहीं भी चले जाएंगे, छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, तुम, मैं और हमारा बच्चा खुशी से रहेंगे, बस ये सब लड़ाई खत्म हो जाए। तुम पागल हो गए हो क्या? करीना चीखी। उसी समय रूपा खड़ी हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका पति भी इस खेल में शामिल है। माहौल और बिगड़ने लगा था। वेदांत ने अपनी माँ से कहा, मॉम जो भी हिस्सा है आप डैड के साथ रहिए, मैं करीना को लेकर जा रहा हूँ, जब बच्चा होगा आपको खबर कर दूंगा। चलो करीना अपना सामान पैक करो। करीना तड़प उठी। याद रखना, अगर तुमने प्रॉपर्टी छोड़ी तो मैं ना तुम्हें रखूंगी और ना बच्चे को तुम्हारे पास रहने दूंगी। वेदांत तुम मुझे मेरे बच्चे से कैसे दूर कर सकती हो? करीना जहर जैसी आवाज में बोली, क्योंकि बच्चा मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। नीचे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए की थी करीना? करीना ठिठक गई लेकिन कुछ बोली नहीं। वेदांत आगे बोला, एक बात आज मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरा और डैड का झगड़ा हो चुका है। डैड का बलवंत अंकल से झगड़ा हो गया और इस लड़ाई में मैं बीच में पिस गया हूँ। अब मैं इस खानदान को छोड़ रहा हूँ, कहीं नौकरी करूंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, दूर जहाँ ये सब तमाशा ना हो। उसने एक पल के लिए उसे देखा बहुत उम्मीद के साथ, और हाँ अगर तुम सच में मुझे चाहती हो तो मेरे साथ चलोगी, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी तो तुम कभी नहीं चलोगी। बताओ करीना, क्या इसलिए तुमने मुझसे शादी की? पूरी फैमिली सदमे के साथ दोनों को देखने लगी। हर चेहरे पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी, कोई हैरान, कोई गुस्से में, कोई चुप। असल मुद्दा तो वेद के ऊपर हुए हमले का था। रमेश मेहरा ने वेद पर हमला करवाया था और उसी से पूरा घर फटा था। लेकिन अब बहस का रास्ता बदल चुका था, अब निशाना करीना और वेदांत की शादी पर था। रूप महारा ने आवाज ऊंची की, बस करो तुम दोनों, चुप हो जाओ, जिस जगह जाना है चले जाओ, मगर अभी बहस बंद करो। वो ये झगड़ा वहीं खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन करीना पहले ही सुलग चुकी थी। उसकी आंखों में आग और अहंकार दोनों थे। तो फिर सुनो, वो झटके से मुड़ी और कमरे की ओर चल दी, भारी कदम, तेज गुस्सा और बिना पीछे देखे कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ, पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया। वेदांत के हाथ बेमन से लटक गए, वो पीछे नहीं गया, वो सिर्फ वहीं खड़ा रहा। वेद करीना की असलियत जान चुका है, वो सच सबके सामने क्यों नहीं बता रहा? क्या वेदांत सचमुच बदल गया है, जहां से कोई रमेश मेहरा और वेदांत की चाल है?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए।